Welcome to Earth Unearthed. In this episode, we are going to be talking about the recent liberalization of geospatial data by the central government in India. While geospatial data sounds very heavy, in fact, it's fairly simple. It refers to any data that contains information about a specific location on Earth's surface, whether it's natural features or man-made features. The episode is in both English and Hindi. There are two parts of the conversation. The first one is in English, where I interview Shriya Karunam. Shriya works at Locale. Locale is a startup working in geospatial intelligence. The second part of the conversation is in Hindi, and it's a syndicated episode where I appear on Kumar Anand's Hindi YouTube show, Janhit Junction. So, first off, welcome to Earth Unearthed, Shriya.
Hello, hi Akash, nice to have, thanks for having me here.
So, geospatial data is, I mean, it sounds very heavy. Could you tell us how it's different from maps? I've already tried to define it, but what are the things that, you know, distinguish it from maps? From what I understand, maps are a subset of, you know, a bigger superset, which is geospatial data. So, could you tell us more about it?
Oh, yeah, sure. So let me just, you know, since you did mention that geospatial data is a heavy topic and not many people may be aware of it, but say if you've ever booked a cab, ordered, say, a pani puri from your local Swiggy or your Zomato, or say you've, you know, tagged your location on any social media site, you have worked with geospatial data, right? So it's basically all around us. And it's actually known by a lot of names, right? So geospatial data, spatial data, geodata, location data. But it's essentially the same. Like you mentioned, it's any data that has a location component to it. So it may be an address, city, a zip code, and so, right? It comes basically from your GPS and your satellite imageries and geotagging and so on. So when you spoke about maps, right? So we basically represent this geospatial data in the form of lines, shapes, or polygons. So maps are basically a visual representation of what we call geospatial data. So not as much as a subset, but more of a representation, if I may say so.
The policy that was just reformed, I think 3 days back,
correct?
It was sort of an anachronistic policy, if I may say. Actually, I mean, I think it was 30 years due, not 30 years, at least 20 years due, the policy reform. The interesting thing here to note, I feel, is that the policy was from a time when maps were super important and were super secretive as well. So that, I mean, they were used in strategy, especially in geostrategy and, you know, military strategy, right? Mm-hmm. So it was a colonial era policy, and they had tried to reform it in 2016. Which didn't really go all that well, and we'll talk about it. But let's start on a lighter note. Shriya, what are your first memories of maps?
So my first memory of a map was when I think I got a jigsaw puzzle of the world map as a birthday gift when I was, say, 8-9 years old. And I think I probably solved it again and again and again, just to sort of get a hang of, you know, where the countries are and what it does, right? And to be very honest, my fascination for maps started after I started working with Locale. So yeah, the jigsaw puzzle still, you know, I hold it close to my heart, and that has been it for the maps for me. And it has always been my actually dream to sort of, you know, put my phone aside and actually carry a physical map and explore a city. We'll see how that goes.
Yep, that makes sense. My first memories of maps are also from, you know, childhood. When I remember when I was in standard second or in third, I used to play with Globe a lot, and with, you know, different maps of India, of the continent of Asia, and of the world as well. So I have memories which are associated with maps, because I used to play around with maps quite a lot. But, you know, I mean, quite a lot has changed from then to now, and we don't really see maps as in the physical maps in mm-hmm. homes of people or in classrooms anymore, because all of that is now available online. And mm-hmm. that is also something which basically signifies the shift in the whole outlook towards geospatial data. So could you tell us more about the 2016 reform and how it was so different from what has happened now? And yeah, so maybe if you could just outline the differences.
Awesome. So the thing is, both of the policies that have been released have the same objective, to basically enable people to get into the geospatial industry and to sort of radicalize the innovations that are happening, right? But the problem is with the NGP 16, 2016, the National Geospatial Policy, the policy outlines, right, the rules that were mentioned with it didn't really align with the goal that they had in mind. So there were, I think we had to apply for a license and to basically get geospatial data. And even sometimes, I think the mere possession of geospatial data was punishable at some level, right? So this sort of creates a barrier on the kind of innovation that you can do with the geospatial data. But I think that has changed very much when it comes to the 2020 policy, where the regulations and licenses are pretty much nil, to be very honest. So that kind of changes things, right? So the way you outline your policy kind of changes the game for the users and people who are going to be leveraging this particular geospatial data.
How do you think this would revolutionize the industry?
So this is obviously a very huge step, right? From going to taking licenses and sort of not having the proper data to so basically the main challenges that were there was no reliable database, and there was first an absence of comprehensive policy, and there were no guidelines on the data sharing and all of that, right? So this kind of changes the game in a lot of ways, to be very honest. So first one would be standardization across the country. So once the boundaries of a particular city, a particular state are standardized across the city, there will be lesser errors in mapping and lesser confusion as well, right? And obviously the easy availability of spatial data. I think the government is making it very easy for people to sort of download using their modern techniques like API, cloud servers, and so on. And having this useful format and, having downloads in just a click away would make it very easy for people to access the particular spatial data. And then obviously we are going to see a whole bunch of innovations in this GIS industry when it comes to, say, logistics, delivery, e-commerce, smart cities, autonomous drones, and the marine industry, fisheries. I mean, I think I could go on for a very long time, right? So I think these are the ones that come on top of my head. Like, these are a few of the main ones that would sort of revolutionize the industry itself.
Makes sense. So the interesting thing is that from what I see it, the unintended consequences are basically the unseen effects. I would not say unintended consequences as such, but more of the unseen effects of the policy are going to be very wide. So if anybody gives you an estimate of how this would affect the Indian economy, if anybody tries to put a number to it and say that so I remember I see Dr. Harshvardhan, who's the Science and Technology Minister of India, he put a number. He said 1 lakh crore rupees geospatial industry by 2030. But I think he was talking about direct effects, and he was talking very much in terms of just the narrower geospatial data industry as such, but not about the wider ramifications of it on how it would affect so many other industries, right?
Correct.
So if we take all that second order and third order effects into account, I think it's impossible to put a number to it right now, because there's so many things that would happen, and in an economy which is a spontaneous order of sorts,
Definitely.
entrepreneurs create value each and every day, and nobody knows what new would come up tomorrow,
Yeah,
right?
that's the thing, right?
So yep.
Location data is so ubiquitous, like it's everywhere. So when you mention the second order and the third order, it is so pervasive, right? You can't really separate location from certain industries. Like, even any particular company, even your, say, Instagram stores, right? They have an idea of where their audience are from, like which location. So when it's so intrinsic to the way we sort of live and move, and our devices, right? Every time our device opens up, they ask a permission to give our location access. So at this rate, it's very hard to separate the geospatial industry from the rest of the industries. So I do think, like, I completely agree with you on the fact that, you know, we can't really put a number on it. Or, I don't think we can predict at the rate at which it will grow. But I do believe that it will definitely gain more traction, right? Because till now it has remained a niche industry, whether for the good or the bad, but it has remained a niche industry. So I think this policy reform will definitely move it into a more mainstream one, right? And it will start probably becoming a part of the curriculum, like how in artificial intelligence and data science has become so innate to what we study these days, right? Like, I don't think a conversation goes by without AI. And I hope that, you know, geospatial industry seeps in just as well with youth and the student community as well, because I hope there are a lot more communities that rise up and a lot more people who are speaking about it, because that sort of community also creates a lot of educational database from which the people can learn, right? So I think that is a very good thing that could come out of this. And given how internet is such a good place to sort of learn new things, right, having a huge community and that sort of database would really be a positive effect, in my opinion.
Okay, so let's try to look at it this way. Let's try to narrow it down and, you know, go more granularly. Let's try to look at how the change or how the reform would significantly or maybe marginally, that is something that you would tell me, alter how you guys work at Locale. So how would it affect Locale?
Locale is basically a location analytics platform for city and operation teams to analyze their ground assets, right? So it's basically like Mixpanel, but for location. I think it would change the way we can calculate the metrics, right? So these metrics are calculated on a district level, on a village level, and on a state level. So when we're able to go and get those metrics on that particular level, it becomes very easy to provide value to, say, supply chain operations and delivery people and even the mobility industry, right? So by providing those very specific metrics and having those correct boundaries, I think would be the first immediate impact that I can see coming.
So last question, and we'll close our conversation with this. It has been fantastic talking to you. Could you tell us more about how this would affect a normal person?
So I think when it comes to a normal person, right, I think, all our lives are connected, right? Your delivery services and your mobility services. When you want to go out, you want to take a cab. And when you want to order, you possibly say, everything is at the tap of your fingers. I think with the improved geospatial data, right, I think these services also will start getting better. So hopefully you will start seeing less of, you know, your order has been cancelled or your ride has been cancelled. I think these may seem like a very small change in your life, but I think these add to a lot of, frustration, especially when you're in a hurry, right?
Yep, that makes a lot of sense. I think thanks a lot for joining, Shreya. It was wonderful talking to you.
Thank you so much for having me, Akash. It was very awesome talking to you. And I think it's my privilege to sort of, you know, it's my honor to be here, actually.
आकाश आपका पुनः स्वागत है जेनिक जंक्शन में.
धन्यवाद कुमार, धन्यवाद. काफी अच्छा लगा दूसरी बार आके.
तो जियोस्पेशियल डेटा एक्सेस में उदारवादी नीति के आ जाने से एक आम मतदाता, करदाता और उपभोक्ता को क्या क्या फर्क पड़ता है, उनपे क्या इसका असर होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. बट जो टॉपिक है उसे ऐसा लगता है कि जो बड़ी टेक कंपनी हैं जो कि बैंगलोर या हैदराबाद में बेस्ड हैं, उन पे ज्यादा फर्क पड़ता होगा, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बट इससे पहले कि हम दोनों विषयों पे चर्चा करें, आप इसकी इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि देंगे कि ये बदलाव क्या है, इससे पहले क्या नीति थी और अब क्या नीति है?
जरूर कुमार, जरूर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जियो स्पेशल डेटा, जो टर्म है, जो बेसिकली ये दो दो शब्द जो है वो क्या है। तो क्योंकि सुनने में बहुत भारी भरकम लगते हैं ये शब्द, और इसलिए थोड़ा एक रिजर्वेशन साबित था कि क्या इस विषय पे हमें ये चर्चा करनी चाहिए, कितना पॉपुलर होगा, लोग कितना सुनना चाहेंगे। पर आपको बता दो, बहुत ही जो एक मामूली, बहुत ही आसान सा टर्म है, जो मतलब समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो भी धरती की परत पर जो भी कुछ मौजूद है, नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, जो भी फीचर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई सा भी एक लोकेशन है दुनिया में, वो बेसिकली एक जियो स्पेशल उसका उससे जो रिलेटेड डेटा जब कैप्चर होता है तो उसको जियो स्पेशल डेटा का नाम दे देते हैं। तो यानी वो आप जो जो मैप्स देख रहे हैं गूगल मैप्स पे, वो हुआ सैटेलाइट इमेजरी है, वो हुआ ज्यादा एडवांस्ड सर्वे मैपिंग होती है जो स्ट्रीट का व्यू होता है जिसमें, वो हुआ, ये सब जियो स्पेशल डेटा है बेसिकली। तो पहले जो था कि पहले ये काफी एक तरह से इसको लाइसेंस्ड सेक्टर कह दें या फिर उससे भी ज्यादा कहें कि काफी रेगुलेटेड, हेविली रेगुलेटेड सेक्टर था, जिसमें मैपिंग करने के लिए और एक मैप को शेयर करने के लिए भी सरकारी अप्रूवल की जरूरत होती थी। तो काफी ज्यादा महंगा हो जाता था ये पूरा प्रोसेस जो है, वो काफी ज्यादा महंगा हो जाता था, काफी टाइम टेकिंग हो जाता था सारी कंपनीज के लिए। और इससे हुआ क्या, बेसिकली इस पॉलिसी, ये काफी कॉलोनियल एरा पॉलिसी थी जिसको चेंज नहीं किया गया था। थोड़ा बहुत जो बदलाव हुआ वो भी कोई बहुत अच्छा बदलाव नहीं था, रिग्रेसिव बदलाव ही थे। तो इस नीति से हुआ क्या कि जो मैपिंग है वो फॉरेन कंपनीज करती थी, क्योंकि फॉरेन कंपनीज तो सैटेलाइट डेटा का अपने इस्तेमाल करती हैं, राइट, उनको तो भारत सरकार रोक नहीं सकती है। तो वो डेटा फ्रीली अवेलेबल होता था, या वो डेटा जो है वो कंपनीज खरीद पाती थी, पर भारत में मैपिंग नहीं हो पाती थी। तो जैसे आप देखेंगे गूगल अर्थ एक सर्विस है, राइट, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गूगल अर्थ पे भारत में कोई पाबंदी नहीं है। गूगल अर्थ आप देख सकते हैं, गूगल अर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए, लेकिन गूगल अर्थ कोई भारतीय कंपनी अगर बनाए तो वो इलीगल होता है। वो मतलब इट्स इलीगल इन द सेंस कि वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि पूरे देश की आप मैपिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे देश की सर्वेइंग, पूरे देश की मैपिंग जो है वो ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते थे, बिकॉज आपको हर एक छोटे से मैपिंग के लिए भी रेगुले आपको एक सड़क की मैपिंग करनी हो, उसके लिए भी आपको एक रेगुलेटरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था जिसमें 4-6 महीने लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि भारत की मैपिंग आप कैसे करोगे।
आकाश, आप कह रहे थे कि ये कॉलोनियल एरा पॉलिसी थी, और दूसरा चीज आपने बोला कि कैसे सैटेलाइट के थ्रू अब ये हो जाता है, तो कॉलोनियल एरा में तो सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे, तो मतलब उस समय अगर आप पेन पेपर पे भी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते थे। और एक चीज आपने बताया कि कैसे इसमें समय और पैसा दोनों ही काफी लगता है, खर्चा होता था
जी
हमें इनसे पहले, और अब जो नया बदलाव आया है उसमें उसमें क्या बदला है इस लोगों के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी भी एक चर्चा कर लेते हैं कि कॉलोनियल एरा जो पॉलिसी थी वो क्यों थी, क्योंकि बेसिकली काफी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस होती है, यानी रणनीति जो आप देखें सैन्य रणनीति होती है उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो नक्शे होते हैं, राइट। और उस समय चूंकि कोई से भी ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नक्शे जो बनाना है वो केवल सरकार बनाती थी, और वो काफी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। पर जब से सैटेलाइट का एडवेंट हुआ है, सैटेलाइट जब से हैं, तो सैटेलाइट में अगर अमेरिका की सैटेलाइट है तो वो ऊपर से सब कुछ देख पा रहे हैं, तो फिर वर्चुअली मतलब इसका कोई खास इंपॉर्टेंस रह नहीं गया। पर भारत को काफी समय लगा इस पॉलिसी को चेंज करने में, और जो विदेशी कंपनियां हैं वो तो आपकी सैटेलाइट मैपिंग वगैरह तो कर ही दे रही हैं, और वो सब आपको बेसिकली जो भी इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको किसी विदेशी कंपनी की सर्विस चाहिए उसके लिए वो चार्ज करते हैं, और काफी ज्यादा चार्ज करते हैं बिकॉज अल्टरनेटिव्स ज्यादा नहीं है उस मामले में, राइट। तो इस कारण से ये जो एक सेक्टर था वो काफी रेगुलेटेड सेक्टर था, और अभी जो सरकार ने किया है वो काफी अच्छा है एक्चुअली, काफी अप्रत्याशित है, काफी मैं कहूंगा कि एक तरह से मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि अभी इतना कुछ थोड़ा बड़ा बदलाव होगा। वैसे लोग की भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ खास फर्क अभी पड़ नहीं रहा है, बट मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि इस पर भी कोई बवाल हो जाए आगे चलकर तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा एक्चुअली, बिकॉज इसमें भी बहुत तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, तो क्या पता इससे सिक्योरिटी को खतरा हो, राइट? तो इस तरह के सवाल उठ सकते हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी सरकार ने क्या किया वो देख लेते हैं। तो सरकार ने किया है कि सरकार ने दो चीजें की हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये है कि सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को डीरेगुलेट कर दिया है, यानी किसी अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भारत में कोई भी मैपिंग, कोई भी सर्वेइंग कर सकते हैं। पहले ये सर्वेइंग आप समझ लो कि सर्वे एक बेसिकली सर्वे ऑफ इंडिया करके भारत सरकार की एजेंसी है, उनकी मोनोपोली थी या फिर प्राइवेट कंपनी जो अलाउड थी उनको बहुत ज्यादा अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। अब वो सारी प्राइवेट कंपनी जो भारत में स्थित है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय कंपनीज ये कर सकती हैं, विदेशी कंपनीज भारतीय कंपनीज जो है वो सर्वे मैपिंग कर सकती हैं।
ये जो डीरेगुलेशन का जो है, ये जो एक उदारवादी नीति आई है, उसका एक पार्ट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, अंडरस्कोर करना चाहूंगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है कि अब भारत की कंपनियां सेल्फ अटेस्ट कर सकती हैं और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको अगर आप मीट कर रहे हैं तो आप फ्री हैं इन इस डेटा को यूज करने के लिए। तो ये जो सेल्फ अटेस्ट करके और खुद और गाइडलाइन को मीट करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी क्षेत्र में जो रेगुलेशंस होते हैं, आप जहां सरकार जहां जहां रेगुलेशन लगाती है वहां पे भी इस तरह का बदलाव अगर हो कि सरकार केवल गाइडलाइंस बना दे और उसके बाद चाहे भारत के लोग हों या कंपनियां हों या जो कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो आप उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और उस गाइडलाइंस को फॉलो करके अगर आप उनको मीट कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली, आपको एक्सेस मिल गया तो आप ऑटोमेटिकली वो काम प्रक्रिया आप चालू कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ना कि आप एक लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए फिर कोई उसका लाइसेंस की प्रक्रिया कोई चेक किया करेगा, कोई बहुत टाइम लगाएगा और उसके बाद उस पे एक्सेस आपको मोहर लगेगी और उसके बाद ही आप वो कर सकते हैं। ये जो सेल्फ टेस्ट करने का तरीका है, जो डीरेगुलेशन का जो तरीका है, ये अगर और भी बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया जाए तो एक वो कहते हैं ना सी चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज है ये, एक डीरेगुलेशन का जो स्टाइल है ये लोगों के लिए काफी अच्छा होगा फिर।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक सर्टेन लेवल है ट्रस्ट का जो कि आपको, आप एक डेमोक्रेसी है, एक लिबरल डेमोक्रेसी अगर भारत अपने आपको कहता है, तो एक सर्टेन डिग्री है ट्रस्ट का जो
ट्रस्ट जो आपने बोला आस्था, एक बहुत ट्रस्ट, हाँ, भरोसा, एक बहुत, हाँ, बहुत बड़ा वर्ड है। अब तक हम नहीं करते रहे, हम अपने लोगों पे काफी शक और शंका और संदेह करते रहे हैं, तो वो उससे अगर हम कहीं दूर हट करके उन पे भरोसा करके करें तो बिल्कुल वो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
तो ये काफी एक वेलकम चेंज है जिसको हम कहें, तो उस दिशा में जरूर बिल्कुल वेलकम चेंज है। तो जैसा कि आपने बताया कुमार कि एक सरकार ने एक गाइडलाइन जो है वो रिलीज की है जिसपे बस कंपनी को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। एक निगेटिव लिस्ट है सरकार ने बनाई है। तो पहले क्या था कि ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा था कि चूंकि मैं ये तुलना करने से बचना चाहता था, बट मैं फिर भी ये तुलना करूंगा कि 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसी कड़ी में ये एक आगे रिफॉर्म है, बिकॉज काफी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल उस तरह का है और उससे कहीं ज्यादा आगे का है एक्चुअली, क्योंकि वहां पे भी जो पॉजिटिव बेसिकली एक लिस्ट होती थी कि आप इतने ही चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं, इतने ही चीजों को बेसिकली डीलाइसेंस किया गया है, तो 1991 के रिफॉर्म ने उसको बेसिकली उलट दिया कि अब एक निगेटिव लिस्ट है, इन चीजों को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर इन चीजों के लिए आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ भी सरकार ने वही किया है कि सरकार ने एक निगेटिव लिस्ट बनाई है, सरकार एक निगेटिव लिस्ट बनाएगी जो सेंसिटिव इन्फो होगा, जहां पे सरकारी रेगुलेशन होगा थोड़ा बहुत, पर उसके अलावा बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं। और पहले क्या था कि पहले आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी, बेसिकली उसमें भी जोन्स बटे हुए थे। ड्रोन के लिए मुझे याद है, ड्रोन की पॉलिसी जो भारत की थी वो काफी खराब थी और वो काफी रिलेटेड है इस टॉपिक से, क्योंकि वहां आपको हर एक कदम के लिए आपको वहां भी अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। तो आशा है कि ड्रोन पॉलिसी भी,
लेकिन आकाश हमें ये मेंशन जरूर कर देना चाहिए साथ में कि ये जो पॉलिसी आई है वो अच्छा है, इसका ऐसा लग रहा है कि हमें स्वागत करना चाहिए, और हम इस पे भी बात करेंगे कि इससे एक आम आदमी का क्या फायदा होगा या नुकसान क्या हो सकता है, क्या खतरा है। लेकिन ये बात है कि इस तरह के अगर बदलाव हैं तो ऐसा लग रहा है कि काफी देर से आ रहे हैं, ये बहुत पहले से हो जाने चाहिए थे। आप 2021 में अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो ये काफी, ये नहीं कहूंगा मैं कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए धन्यवाद आने के लिए, बहुत पहले आ जाना चाहिए था आपको। तो बदलाव हुआ है, ठीक है, अच्छा है, चलो नहीं आने से नहीं आए, नहीं किया उससे अच्छा किया, उससे अच्छा है कि आपने ये बदलाव किया, ये नीति में फेरबदल की, लेकिन ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस तरह के और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह की पाबंदियां हैं, और पाबंदियों को हटाने का कोई खर्चा नहीं है, आपको केवल अलाउ कर देना है। तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करते रहते हैं हम, तो उसका एक बहुत बड़ा एक पार्ट ये भी है कि आपने लोगों को कहा कि आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जो जो पहले बता रहे थे कि फॉरेन कंपनियों से डेटा एक्सेस करने में खर्चा लगता था, समय लगता था, या फिर भारत के में परमिशन लेने में समय लगता था, तो वो सब चीज अब अगर बचेगा तो उससे तो अब इसका पहलू अगर दूसरे टॉपिक पार्ट पे आए आकाश कि इससे आम आदमी टेक कंपनियां को छोड़कर के आम आदमी
दो चीजें मैं उससे पहले जरा डिस्कस कर लेना चाहूंगा कि दो चीजें, पहले तो फॉरेन कंपनी से डेटा खरीदना पड़ता था पर डेटा की क्वालिटी भी खराब होती थी, क्योंकि फॉरेन कंपनी जो है वो सब सैटेलाइट इमेजिंग तो कर पाती हैं पर फिजिकल जो मैपिंग जिसको कहते हैं कि वहां आकर उस स्ट्रीट को आकर मैप करना हो, वो तो वो भी नहीं कर पाती थी। तो उस तरह का डेटा आप सोचिए कि पूरे भारत जैसे बड़े देश में अवेलेबल ही नहीं है। जो डेटा अवेलेबल है वो सर्वे ऑफ इंडिया का किया हुआ है या फिर छिटपुट प्राइवेट कंपनी जिनको वो थोड़ा बहुत अप्रूवल मिला था उनका किया हुआ है। तो वो चीज है। और एक दूसरी चीज जो सरकार ने की है, जो दूसरा बड़ा बदलाव है, वो ये है कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो भी डेटा है, वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है वहां पे, और जो भी बाकी सरकारी एजेंसी ने मैपिंग की है, उसको सरकार ने पब्लिक, बेसिकली एक जिसको कहते हैं पब्लिक डेटा बना दिया है कि आप कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसमें बिल्ड कर सकता है। तो उससे भी एक भारी जो इम्पेटस कहते हैं वो मिलेगा। तो इट्स एक तरह से एक नया कॉमन्स है जिसको आप रीइमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे।
तो हमारे जो तीन ग्रुप ऑफ लोग हैं, जो तीन समूह के लोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं जनहित जंक्शन पे, मतदाता, करदाता और उपभोक्ता, तो ऐसा लग रहा है कि उन तीनों के लिए ये कहीं ना कहीं फायदे की बात है, अच्छी बात है, ये हमें स्वागत करना चाहिए इस चीज का। और तो जैसे आपकी आपके शोध का जो विषय है, जो थीसिस का विषय है, चार्टर्ड सिटीज और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिटीज के बारे में चर्चा जो आप शोध कर रहे हैं, और बाकी बाकी जगह बाकी देशों में भी हो रहा है, तो इसका एक जो एप्लीकेशन है जहां पे इनका इसका फायदा लगा, इसको अप्लाई करके इसका फायदा उठाया जा सकता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे आप मैं कुछ जगह इसको रिसर्च करने के लिए वो पढ़ रहा था, तो इसके जो एप्लीकेशन है वो ऐसा लगता है कि हर जगह हो सकते हैं, ई कॉमर्स में हो सकता है, सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, आप जमीन की गुणवत्ता और जो सॉयल की गुणवत्ता को नाप करके उसका डेटा अवेलेबल करवा सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों का। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो मुझे लगता है कि काफी न्यूमरस है, इन्यूमरेबल है। और अब आपने इस पॉलिसी में ये बदलाव के माध्यम से ये होगा, ये हो सकता है पोटेंशियली कि आपने क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन चालू कर दिया यहाँ पे, जो कि पहले पहले नहीं था, पहले परमिशन परमिटेड नहीं था। तो एक एक अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है और वो हमारे एक तरह से पसंदीदा अर्थशास्त्री हैं, फ्रीडरिक हायक, तो उनका उनका एक पेपर है जहाँ पे वो कहते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी, और वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज को डिफ्रेंशिएट करते हैं जनरली। तो ऐसा है कि आपका जो सैटेलाइट डेटा है, तो डेटा तो आपने इकट्ठा कर लिया एक जगह है ना, लेकिन उसको जो इंफॉर्मेशन को जो जो सूचना है जो को अगर आप सही में ज्ञान में बदलना चाहते हैं तो वो लोकल लोग ही बदल सकते हैं, है ना। जो आप जैसे कह रहे थे कि और सैटेलाइट से तो आप कितना ही चीज पता कर पाओगे, गूगल अर्थ में कितना ही चीज पता हो पाएगा, और जो आपको जैसे कि लोकल एरिया का मैपिंग करना है, छोटी छोटी जगहों पे मैपिंग करना
street
है,
स्ट्रीट व्यू सर्वे
प्लस बहुत सारे कवर्ड एरिया का मैपिंग करना है, जैसे कि कोई मॉल हो गया या एयरपोर्ट हो गया उसके अंदर की मैपिंग करनी है, तो वो सब भी अब तो इसकी जो लोकल जो इंफॉर्मेशन है उसको नॉलेज में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, जो लोकल लोगों में बटा हुआ है, हम सब भारत के 1.3 बिलियन लोग हैं, जो 130-135 करोड़ जो लोग हैं, तो उन सब में जो इंफॉर्मेशन बटा हुआ है, तो अब उनको एक तो यह है एक्सेस है, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नॉलेज बॉडी में, इंफॉर्मेशन की जो बॉडी है उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लस इस बॉडी बड़ा होता जाएगा, ये इंफॉर्मेशन का जो क्या कह रहे हैं, जो कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है वो बड़ा होता जाएगा, बलून होता जाएगा, और फिर हर कोई इसे उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता है और उससे फायदा भी उठा सकता है. तो इंफॉर्मेशन का नॉलेज में प्रक्रिया में बदलने का तरीका, और उस ज्ञान से जो हम समृद्धि की बात करते हैं कि कैसे उससे एक दूसरे का मैं आप या भारत की कंपनियां या भारत के बाकी लोग जो हम जो भी प्राइवेट एंडेवर करते हैं, प्राइवेट जो भी चीजें करना चाह रहे हैं उसमें इसकी एप्लीकेशन के थ्रू इसको अप्लाई करने के करके इस लोकल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल अब हो गया है उसको अप्लाई करके नॉलेज में बदल करके और हमारी जो प्रोडक्टिविटी कहते हैं उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इजाफा, बहुत ज्यादा इंक्रीज और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने का की संभावना है. और ये एक बहुत बड़ी अनदेखी चीज है और ये खुलने से ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा.
मैं एक और चीज बता दूं कुमार की अभी आप काफी डिस्कशन देख रहे होंगे कि इस जो उदारीकरण है इससे क्या क्या फायदा होगा, तो किन किन सेक्टर्स को फायदा होगा. तो मैं आपको कुछ ऐसे गिना सकता हूँ सेक्टर्स जिसपे मैं आऊंगा, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि इस बदलाव से कितना चेंज आएगा, कितना इससे कितना कुछ बदलेगा और कितना वेल्थ क्रिएट होगा. ना ही मुझे अंदाजा है, ना ही सरकार को अंदाजा है, ना ही अभी किसी भी एंटरप्रेन्योर को अंदाजा है. क्योंकि एक बेसिकली जिसको हम कहते हैं जिसको हम अर्थशास्त्र में कहते हैं कि एक डिस्कवरी प्रोसेस है, वो अब चालू होगा. और यहाँ पे बेसिकली इस सेक्टर में जो चेंजेज आ रही है उसका जो रेमिफिकेशन है वाइडर हमारे इकोनॉमी पे वो क्या पड़ेगा, वो तो आने वाले 5-10 साल में पता चलेगा. और बेसिकली मतलब सरकार ने कहा कि मैपिंग कैपिटल बनाना चाहती है भारत को, मैपिंग पावर बनाना चाहती है. तो बेसिकली ये बात है कि यहाँ एक तो हमारे पास जो अभी डोमेस्टिक सेटअप है, इसरो है, वो भी एक बेसिकली वेल एक्लेम्ड स्पेस बॉडी है, और उसके अलावा भी जो हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं इस एरिया में वो ठीक ठाक है, उस लेवल पे है कि शायद हो पाए. सबसे बड़ी बात ये है कि भारत एक बहुत विविध देश है, काफी ज्योग्राफी जो है काफी विविध है. तो मैपिंग पावर बनने में की दिशा में सबसे बड़ा जो आपको एक कहते हैं कि इनेबलर है वो ये है कि भारत चूंकि इतने लोग हैं, इतने डिफरेंट फीचर्स हैं, तो यहाँ पे मैपिंग से काफी कुछ अनलॉक होगा और वो तो आने वाले 5-10 साल में ही पता चलेगा. तो आपको मैं जैसे कुछ बता दूं कि स्मार्ट सिटीज डेफिनेटली ये होंगी. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं कि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट हुआ या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हुए, आपको मतलब स्मार्ट पावर सिस्टम्स वगैरह हुए, वो सब जरूर बेहतर होंगे. सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इससे बेहतर होंगे, इसलिए क्योंकि पहले सरकार को हमेशा हर चीज के लिए मे बी सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराना पड़ता था. अभी अगर कोई प्राइवेट कंपनी ने कर रखा है तो वो सीधे बस लाइसेंस कर सकते हैं उस डेटा को. मतलब अभी जो है कि एक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा बढ़ेगा, तो जो आपको एक तरह से कॉस्ट होता है वो घटेगा पूरी चीज का, तो उसका अर्थ आपको अर्थव्यवस्था में काफी फायदा होगा. लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स जो है आपको आपके घर तक सामान आना, और आप उबर ओला देखते हैं, उबर हुआ, ओला हुआ, डंजो हुआ, डंजो करके एक बहुत अच्छा ऐप है जो कि आपको कुछ भी डिलीवर कर देता है आपके शहर से. उसके अलावा स्विगी, जोमैटो वगैरह, ये सारे ऐप्स जो हैं ये इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, कॉस्ट इनके लिए कम होंगे, जिसका सीधा असर कंज्यूमर्स पे होगा. उसमें थोड़ा समय लग सकता है पर ये होगा जरूर. उसके अलावा ऑयल एंड गैस जो है इस सेक्टर में डिस्कवरी प्रोसेस जरूर थोड़ी बेहतर होगी. ई कॉमर्स की तो हमने बात कर ही ली है, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, उनमें जरूर. तो ई कॉमर्स की हमने बात कर ही ली है, तो उसमें जरूर बेहतरी आएगी. इसके अलावा कृषि जो है, कृषि में काफी जियो सेंसिंग का जो है, आपको रिमोट सेंसिंग का सॉरी, और इन चीजों का काफी एप्लीकेशन है, तो उससे भी काफी कुछ अनलॉक हो सकता है. उस डिफेंस में भी इसका फायदा हो सकता है. एक और बात है कि काफी जो 2-3 लॉज हैं, मैंने इस बारे में सोचा और मुझे ये अंदाजा हुआ कि FRA करके एक लॉ है, आप जानते होंगे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जो 2006 में पास हुआ था, जहां मैंने पढ़ा था कि कई जो आदिवासी हैं वो लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए,
और इंडिविजुअल राइट्स की, इंडिविजुअल जो उनके एक तरह से लैंड राइट्स हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो लोग सैटेलाइट डेटा का यूज करते हैं 2006 से पहले का, और जो भी गूगल अर्थ का डेटा है वो यूज करते हैं दिखाने के लिए कि उनका था ही। अगर ये चीज पहले हो गई होती तो शायद हमारे पास वो सैटेलाइट डेटा अवेलेबल होता, जिसके कारण इतना जो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है वो बच जाता। पर अभी कोई बात नहीं है, हम देर आए, मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं है, बट आने में थोड़ी देर जरूर हो गई है। एफआरए का जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि तो अगर 2006 से पहले, ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कंपनी है, आपको मैं नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक मैप माई इंडिया करके कंपनी है, उन लोगों ने कहा कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी 2004 से थी, मतलब जब गूगल अर्थ आया था तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, बट वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि इतने रेगुलेटरी
मैं
बॉडीज
आपकी
थे।
बात से
तो
पूरी तरह सहमत हूँ। तो इतने क्षेत्रों में इसका एप्लीकेशन है, ऐसा लगता है कि जिसको गिना पाना, अभी हम एक लंबा लिस्ट बनाए तो वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा।
असंभव है।
और जो एप्लीकेशन है वो कल को हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो तो हमें पता भी नहीं है। तो जो स्टार्टअप की बात करते हैं वो कहाँ कहाँ इसको अप्लाई
और
करके वो कहाँ कहाँ
बिल्कुल
फायदा इसको उठा सकते हैं वो तो एक आने वाला समय ही बताएगा। आज के जमाने पे हम इसको, तो बहुत सारी अनसीन चीजें हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस इसके जितने दिख रहे हैं वो सारे ऐसे लग रहे हैं फायदे वाले। पहली बार ऐसा है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस सारे पॉजिटिव हैं और दूर दूर तक। और हाँ, और जहां
थोड़े
भी
कंसर्न
अगर,
से मैं उनकी बात कर लूंगा, थोड़े
हाँ
कंसर्न
तो
से
हाँ, तो थोड़ा सा कंसर्न्स के
तो
बारे
मैं
में
उनकी
बताइए
बात देता
कि
हूँ।
एक तो सिक्योरिटी का कंसर्न हमेशा से रहा है, जिसके कंसर्न के कारण अब तक इसमें ये पहल सरकार ने अब तक नहीं की थी, इतना देर लगा है आने में। तो सिक्योरिटी का एक एक्सटर्नल इंटरनल डिफेंस का एक हमेशा खतरा रहता था, उनको लगता था कि ये चीज कंट्रोल करके रखो, केवल सरकार ही डिसाइड करेगी किनको देना है किनको नहीं देना है, तो उस पर एक ताला चाबी बना के लगा के रखो। फिर बाद में पता चला कि ताला चाबी तो आपने लगा के रखा है बट वो चीज चारों बाकी तीनों तरफ से खुला है, तो क्या मतलब है आपके ताला चाबी लगाने से, है ना, बाकी वो सब कुछ
बिल्कुल,
के लिए तो
काफी
एक्सेबल
अच्छी
है।
एनालॉजी है,
तो संदूक
काफी अच्छी
में,
एनालॉजी
तो
है।
संदूक में आपने ताला लगाया पर सामने से केवल लगाया, बाकी तीनों तरफ से वो खुला है। तो इसमें और अगर अभी हम देखें तो जो खतरे की बात है या सोच विचार करके संदेह की बात है कि कहीं हमें थोड़ा सा सजग होने रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे जो हमें ये बताता हो कि थोड़ा पॉज करें और थोड़ा रुकें और थोड़ा इसके बारे में समझें, कोई ऐसा क्षेत्र?
नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है, पर ये पता है मुझे कि आर्मी ने इसका जनवरी में, इसी जनवरी में भी विरोध किया था, जब सरकार ने इस दिशा में सोचना शुरू किया था। तो मुझे जहां तक लगता है वो थोड़ा पैरानोइया है बेसिकली। और आर्मी ने फिर कहा था कि टेरिटोरियल वाटर्स वगैरह हैं जो उसको किसी फॉरेन कंपनी को ये नहीं करने देने के लिए, तो वो अभी भी बेसिकली क्या है कि सरकार ने ये केवल भारतीय कंपनीज के लिए ओपन किया है। पर बात ऐसी है कि देखिए, अगर फिजिकल एक्सेस आपके पास नहीं है, अगर कोई आर्मी का एरिया है तो आपके पास ऐसे भी फिजिकल एक्सेस नहीं है, तो आप मैपिंग सर्वेइंग तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको मैपिंग बेसिकली अलाउ किया गया है, एक्सेस तो अलाउ नहीं किया गया ना। तो एक्सेस जहां का अलाउड नहीं है,
हाँ,
अगर मेरा मॉल है मान लीजिए, तो
नहीं वही
मैं
बात,
मेरी
बिल्कुल
प्राइवेट
बिल्कुल
प्रॉपर्टी
बिल्कुल।
में आपको बना कर
अब
दूंगा।
इंडियन एयरफोर्स का एयरफोर्स बेस है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अलाउ कर दिया कि आप अपना कैमरा लेके जाइए और एयरफोर्स बेस का पूरा नक्शा बना करके गूगल पे डाल दीजिए, या फिर भारत के
बिल्कुल बिल्कुल
पनडुब्बी हैं या फिर और जहाज है तो उनका आप नक्शा बना करके इंटरनेट पे डाल रहे हैं, वो तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तो आपका वो कहना बिल्कुल सही
पर
है।
बिल्कुल
तो सारे मुझे इसके जो चारों तरफ से अगर देखा जाए तो ये तीनों
पर
समूह
मुझे
के लिए,
पता
हाँ
नहीं है, मुझे पता नहीं है इस पर भी बवाल हो सकता है, क्योंकि कृषि जो कानून थे उस पर भी कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे, जो कि वास्तविकता से थोड़े पड़े जरूर थे, थोड़े पड़े थे वास्तविकता से, पर उनको ब्लो किया जा सकता है
कृषि
प्रभाव टू द
एग्रीकल्चर जो
प्रपोजल,
फार्म
वो
लॉज
कितने
हैं,
में समय
जो
लगा।
जो फार्म लॉज हैं वहां पे जो कुछ क्रिटिसिज्म रहे थे, चलो उनको मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो जो क्रिटिसिज्म जो भी होंगे उनको जस्टिफाई कर पाना मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वहां पे तो कृषि में हो सकता है कि कुछ दोनों साइड थे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादातर जहां तक देखा जाए वो एक फायदे की बात ज्यादा है और कंसर्न जो है काफी कम है। और कंसर्न्स अगर आप सही तरीके से उसको एड्रेस कर पाए गाइडलाइंस में तो फिर सही है। और ये जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो रेगुलेशन डीरेगुलेशन का तरीका है कि आप सेल्फ अटेस्ट कीजिए और सेल्फ अटेस्ट करके आपको अब एक्सेस हो गया है, और आप एक्सेस पहले था कि आप जिनको लाइसेंस मिलेगा वही वो बिजनेस कर सकता है, धंधा कर सकता है या एक्सेस चीजें कर सकता है, और अब है कि आप
को पहले लाइसेंस दिया हुआ है और आपको केवल वो लिस्ट किया गया है कि आप बस इन क्राइटेरिया को मीट कर लीजिए और फिर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया पहल है। और जो तीन समूह हमारे लोग हमारे हैं जिसका हम चर्चा करते हैं, उपभोक्ता, मतदाता और करदाता, एक आम आदमी के नजरिए से, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो एक समरी में अगर कहा जाए समराइज करने के लिए, तो एक स्वतंत्रता और समृद्धि की राह पे हमने एक आज एक कदम आगे लिया है इस हफ्ते, इस नया ये नया ये नई नीति में बदलाव हो करके। ये डेफिनेट एक कदम है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि ये एक मजबूत कदम है। और इसके जो फायदे हैं वो हमें आगे दशकों तक देखने को मिलेंगे, कई सालों दशकों तक देखने को मिलेंगे। तो ये सही होगा।
मैं एक छोटा सा डेटा कोट कर देता हूं, जो कि मुझे पता नहीं है कि इस डेटा को एस्टिमेट कैसे किया गया है, पर मेरा मानना है कि ये जो डेटा है ये केवल फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर तक चीजों को देखता है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, अनसीन इफेक्ट्स को देखने की क्षमता अभी किसी में नहीं है। मतलब ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उन्होंने ये डेटा ये अपने शायद स्पीच में बोला था या फिर ट्विटर पे लिखा था कि 1,00,000 करोड़ रुपए जो है उसका फायदा होगा भारत को 2030 तक।
फायदा का मतलब उन्होंने निवेश के बारे में बताया था क्या? फायदा का मतलब उसका प्रॉफिट, बचेगा पैसा?
काफी एम्बिगुअस था। तो मुझे पता नहीं है डेटा कैसे एस्टिमेट किया गया है, क्या इसके पीछे गया है, पर मेरा मानना है कि बेसिकली काफी कुछ सेविंग जो होगी वो अब उसको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल भी है। पर ऑल एंड ऑल काफी अच्छा जो कदम है जैसा कि आपने कहा, और इससे आगे काफी कुछ अनलॉक होगा। अगर हम तीन आपके जो ग्रुप्स हैं उनकी बात कर लें तो उपभोक्ता के लिए चीजें सस्ती होंगी और जो क्वालिटी है वो चीजों की बढ़ेगी। मतदाता यानी सिटीजन्स के लिए जो है किसी भी रेगुलेशन का होना एक तरह से इकोनॉमिक फ्रीडम में बाधक होता है, तो जो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता है वो इससे बढ़ेगी, तो उस लिहाज से अच्छा कदम है। बाकी करदाता के हिसाब से कुछ डायरेक्टली तो ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि इसमें टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट स्टिल ये एक रेगुलेशन था और एक तरह से आप इसको देख लें तो इनडायरेक्ट टैक्स मैं कहूंगा कि ये जरूर था कंपनीज के लिए जो कि इस दिशा में काम करती थी। समय का जो निवेश है वो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है।
और इस डाटा के एक्सेस के लिए आपको बाहर की फॉरेन कंट्रीज को पे करना पड़ता था, फॉरेन कंपनीज को पे करना पड़ता था, तो अब वो बचत हो सकता है सीधे हमारे उपभोक्ताओं के लिए। तो बाहर टैक्स ना जा करके आप टैक्स पे कर रहे थे, तो अब आपका कॉस्ट कम हुआ तो टैक्स का बर्डन कम हुआ, और टैक्स बर्डन कम हुआ भारत की कंपनियों के लिए तो टैक्स तो हर कोई पे करता है। तो तीनों के लिए फायदा।
लास्ट में मैं बस एक नोट, हाँ
फायदा तीनों के लिए।
लास्ट में बस एक नोट कर दूं कि चूंकि हम विदेशी कंपनी से बात कर रहे हैं, तो ये एक आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है उसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। और उस पैकेज का मतलब शायद आपने चर्चा भी की थी उस पर कभी जनित जंक्शन में, मैं उसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ, क्योंकि अगर पूरे पैकेज को देख लें तो उसमें काफी खराब चीजें हैं, लेकिन ये जो निर्णय है ये बहुत अच्छा है। और सरकार ने इस दिशा में लिया है कि इसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा भारत में, और भारत की जो कंपनीज हैं, भारत के स्टार्टअप्स हैं, उनको इससे फायदा होगा, और बेसिकली उसका जो फायदा है उसका लाभ जरूर उपभोक्ताओं तक और पहुंचेगा एट द एंड। तो ये काफी अच्छा निर्णय है।
बिल्कुल, अर्थशास्त्र और जो बिजनेस होता है उसमें हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये अब पहले सूचना के अभाव में जो इफिशियंसी कम हो जाती है, और अब सूचना अगर हर जगह ज्यादा लोगों तक अवेलेबल है और कम खर्चे पे अवेलेबल है और कम समय में अवेलेबल है, तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इफिशियंसी है और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें जो उसका जो फायदा है आने वाले सालों में, तो और सबों के लिए, भारत के हर आम आदमी से लेकर कंपनियों से लेकर हर किसी के लिए, तो उसका आकलन लगा पाना आज के समय पे मुझे लगता है, एक कोई भी नंबर आप कोट कीजिएगा तो वो एक कंजर्वेटिव नंबर ही होगा। तो ये एक, हाँ, तो जितना मैं इस सब्जेक्ट के बारे में, इस नीति के बारे में जितना सोचता हूँ, तो दो बातें मुझे लगती हैं। एक कि इतना ज्यादा समय क्यों लगा इसको करने में, ये तो काफी नो ब्रेनर है, आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। और दूसरा है कि चलो अब कर लिया तो बहुत अच्छा किया, और अब आप इसमें पीछे मत हटिएगा और इस दिशा में, और इसी तरह का पॉलो ऑफ जो स्टाइल ऑफ डीरेगुलेशन है आप बाकी सारे क्षेत्रों में भी कीजिए। तो हम जो कहते हैं कि ग्रोथ की बात है, तो भारत के डेवलपमेंट की, आप तो डेवलपमेंट के छात्र भी हैं, तो डेवलपमेंट की जो चर्चा करें तो भारत का विकास कहीं गुना ज्यादा तेजी से हो सकता है।
बिल्कुल कुमार, एक एंडिंग नोट मेरे तरफ से, क्योंकि हमने पिछली पिछले एपिसोड में जो डिस्कस किया था, पिछले एपिसोड जिसमें मैं आया था, उससे मैं इसको बस लिंक करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बात की थी नीति आयोग के जो नए मॉडल बिल है लैंड टाइटल्स, तो उसकी वो बहुत आसान हो जाएगा राज्य सरकारों के लिए करना भी, क्योंकि अब बेसिकली आपके पास बेहतर जियो स्पेशल डेटा होगा, लैंड इमेजिंग बेहतर होगी, और जब लैंड इमेजिंग बेहतर होगी तो लैंड टाइटल्स को जो आपको क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश कर पाना और उनको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स उनको स्ट्रेंथन कर पाना बहुत आसान होगा कंपैरेटिवली। तो ये जो है इसको हम पिछले एपिसोड से उस तरह से लिंक करके भी देख सकते हैं।
पूरी तरह से सहमत हूं आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कनेक्ट जोड़ा है।
या सो दैट विल बी इट फॉर टुडे शो एंड विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट।